मुझे आपको एक कहानी बतानी है जो हर लोगों के जीवन को बदल रही है। ये कहानी किसी ने बनाई नहीं है, पर यह कहानी बाइबल से है जो सबसे बड़े ईश्वर के शब्द है। ये एक सच्ची कहानी है। यहाँ सिर्फ एक परमेश्वर है और वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो परमेश्वर है वो हर एक आदमी से शक्तिशाली है। आत्मा, धर्मगुरु, सरकार और उस देवता से जिसकी लोग पूजा करते हैं। जब वहां कुछ नहीं था तब उसका अस्तित्व था। जब परमेश्वर ने चीजें बना रहा था तब वो बोला और सब कुछ आने लगा। उसने सब कुछ धरती पर और स्वर्ग में बनाया। उसने खूबसूरत चीजें बनाई, जैसे देवदूतों खूबसूरत आत्मा होती है जो स्वर्ग में परमेश्वर की सेवा करती है। परमेश्वर ने ऐसी चीजें भी बनाई जिन्हें हम देख सके, सूर्य, चांद, तारे, धरती, ग्रह और सब प्राणी। आखिर में उसने एक आदमी और औरत को अपने ख्याल में बनाया और वे बोले ये बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने उस आदमी और औरत को एक खूबसूरत बगीचा रहने को दिया। हर दिन वो दोनों एक साथ चलते और उनका नाता एक दूसरे से और परमेश्वर से अच्छा था। परमेश्वर ने उन दोनों को उस बगीचे का ख्याल रखने को कहा और उसका मजा भी लेने को कहा, एक आज्ञा दी। वे बोले तुम इस बगीचे के किसी भी पेड़ के फल खा सकते हो, पर एक पेड़ जो बगीचे के बीच में है तुम उसके फल मत खाना। अगर तुमने उस पेड़ के फल खाए तो तुम मर जाओगे। उन दोनों का रिश्ता परमेश्वर के साथ और एक दूसरे से मजबूत था। परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हमारा नाता ऐसा हो, उसका साथ और एक दूसरे के साथ। उस आदमी का और उस औरत का परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता था और एक दूसरे के साथ भी। आपको देवदूत पता है जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था? उनमें से एक देवदूत बहुत घमंडी हो गया। उसे परमेश्वर की तरह बनना था और वो चाहता था कि बाकी देवदूत उसे पूजे, परमेश्वर को नहीं। पर यहाँ सिर्फ एक परमेश्वर है जिसे हम पूजते हैं। तो परमेश्वर ने उस घमंडी देवदूत को स्वर्ग से निकाल दिया और हम उस देवदूत को शैतान बोलते हैं। परमेश्वर ने उन सारे देवदूतों को स्वर्ग से निकाला जो उस राक्षस को पूजते थे, वे बुरी आत्माएं हैं। एक दिन उस शैतान ने उस औरत को उस पेड़ के फल खाने को कहा जिसे फल खाना मना था। शैतान ने उस औरत को पूछा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी पेड़ से फल खाने को मना किया है? वे औरत बोली, नहीं, हम उस पेड़ से फल नहीं खा सकते जो बगीचे के बीच में है। अगर हमने उसे छुआ या उसके फलों को कहा तो हम मर जाएंगे। पर वो शैतान बोला, तुम नहीं मरोगे पर तुम परमेश्वर की तरह बनोगे। उस औरत ने उस शैतान का विश्वास किया और उसने वो फल खाया और उसने अपने पति को भी खाने को दिया। उस दिन उन दोनों ने पाप किया था। पाप वो है जब हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। परमेश्वर पवित्र है, वो शिक्षा देता है जब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते। परमेश्वर ने उस आदमी को और उस औरत को बगीचे से निकाला। उस दिन से उनका नाता परमेश्वर के साथ टूट गया। उस औरत और आदमी की तरह हमने भी पाप किया है और हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूटा है और उनका नतीजा नरक में शिक्षा है। हम परमेश्वर की तरह हमेशा ऐसे नहीं रह सकते हैं। क्या हो सकता है? समय गुजरा और धरती पर लोगों की संख्या बढ़ गई। हर एक ने पाप किया है, तब भी परमेश्वर हर एक से प्यार करता है और वो हमसे रिश्ता बनाना चाहता है। परमेश्वर ने लोगों के लिए 10 आज्ञाएं अपने नौकर से भेजी है। परमेश्वर पवित्र है तो उसका साथ रहने के लिए हमें भी पवित्र होना जरूरी है। उन 10 आज्ञाओं ने लोगों को परमेश्वर के साथ अच्छी तरह जीने को सिखाया है। उनमें से कुछ आज्ञाएं हैं, दूसरे देवताओं को मत पूजो और उनकी मूर्तियां मत बनाओ। अपने माता पिता को सम्मान दो। झूठ मत बोलो। चोरी, खून खराबा, उन चीजों से मत जलो जो दूसरों के पास है। दूसरी औरत के साथ संबंध मत रखो। पर कोई भी इन आज्ञाओं का पालन करने वाला नहीं था। जब भी लोगों ने पाप किया, परमेश्वर ने उनके पाप धो डाले। उनकी बलि एक प्राणी का खून था। जब उन्होंने बलि दिया, उन्होंने परमेश्वर को उनके पाप धोने को कहा। खून से ही हम आदमी के पाप धोए जा सकते हैं। जैसे समय गुजरा, उनका दिल पाप से नहीं शर्माया, पर उनकी बलियां सिर्फ एक परंपरा रहकर गई। परमेश्वर बोला, मुझे तुम्हारी बहुत सारी खाली बलि मिल गई। उन प्राणियों की बलि से लोग समझ गए कि वे परमेश्वर के पास अकेले नहीं जा सकते हैं। क्या करना चाहिए? परमेश्वर अब भी लोगों से बहुत प्यार करता है। तभी उसी समय परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि वो लोगों को दिखा सके कि वो परमेश्वर से कैसे रिश्ता बना सकते हैं। यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का एकमात्र पुत्र है। यीशु एक अच्छा शिक्षक था। लोगों को यीशु की बातें सुनना अच्छा लगता था क्योंकि उसने उन्हें परमेश्वर की तरफ जाने को सिखाया था। यीशु एक चमत्कारी और शक्तिशाली सेवक था। एक बहुत सारे लोग यीशु को सुनने उसके पास आए। क्योंकि लोग भूखे थे, यीशु ने 5 ब्रेड और 2 मछलियां दी, उन्हें आशीर्वाद दिया और उसने उन लोगों में बांट दिया। उस दिन 5,000 लोगों ने खाना खाया और वे खुश थे। यीशु की शक्ति हमारे जरूरतों को पूरी कर सकती है। दूसरे समय यीशु ने अपने समर्थों के साथ एक बड़े से तालाब को पार किया। जब यीशु सो रहा था, तभी एक तेज तूफान आया। यीशु के समर्थकों ने यीशु को जगाया और वे बोले, मालिक, हम मरने वाले हैं। यीशु खड़े हुए और उन्होंने हवा और लहरों को बोला, शांत, स्थिर रहो। फौरन हवा और बारिश रुक गई। यीशु की शक्ति निसर्ग से बढ़कर है। जब यीशु दूसरी तरफ आए, तब उन्होंने कब्र के पास एक आदमी को देखा। वो आदमी राक्षसों से भरा था और वो खतरनाक था। जब यीशु ने उस आदमी को देखा तब वो उससे भी प्यार करता था। यीशु ने राक्षस से कहा, छोड़ दो। फौरन उन राक्षसों ने उस आदमी को छोड़ दिया। यीशु की शक्ति बुरी आत्मा से बढ़कर है। दूसरे दिन यीशु का एक दोस्त बीमार हुआ और वो मर गया। कुछ दिनों के बाद यीशु उसके दोस्त के समाधि पर आया। जब उसने देखा कि उसका दोस्त कहाँ दफन था तब वो रोने लगा। यीशु उस समाधि के पास गया और बोला, दोस्त बाहर आओ। उसका दोस्त समाधि के बाहर जिंदा चलता आया। यीशु की शक्ति मृत्यु से बड़ी कर है। यीशु ने सब कुछ किया क्योंकि वो हमें प्यार करता है और वो हमें परमेश्वर के पास आना चाहता है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और एक अच्छा शिक्षक और एक चमत्कारी सेवक है। जो लोग रहते थे और यीशु ने कभी पाप नहीं किया, वो शिक्षा का हकदार नहीं था। बहुत सारे लोग यीशु से प्यार करते थे, पर कुछ धर्मगुरु यीशु से ईर्ष्यालु थे। उन्होंने यीशु को पकड़ा और उसे मारने की कोशिश की। उसने यीशु को सूली पर चढ़ाया। उन्होंने यीशु के हाथ और पैरों को कील से सूली पर लगाए। जब यीशु सूली पर लटक रहे थे तब उनका पवित्र खून जमीन पर गिर पड़ा। वो चिल्लाया, ये खत्म हुआ। यीशु एक अच्छा और आखिरी बलि बना। परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसने यीशु को हमारी जगह मरने को छोड़ा। यीशु ने हमारे पापों के लिए सजा भुगती। प्राणी के बलि से हमारे पाप धुल सकते हैं। किसी को हमारे पापों को भरना है। जब यीशु मर गए तब उसके समर्थकों ने यीशु के शरीर को समाधि में रख दिया। पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके 3 दिनों के बाद यीशु जिंदा हुए और उन्होंने सबको दिखाया कि जिंदा है। उन्होंने साबित किया कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं और वे अपने पिता के पास स्वर्ग में लौट गए। यीशु ने हमारी सजा ली और वे हमें परमेश्वर की तरफ आने का रास्ता दिखा रहे हैं। सिर्फ वही हमें परमेश्वर का रास्ता दिखा सकते हैं। जब यीशु धरती पर थे तब उन्होंने एक कहानी बताई। एक आदमी ने उसके पिता से कहा, मुझे मेरा हिस्सा दो। वो आदमी दूर देश गया और उसने अपना पैसा गलत चीजों में खर्च किया। जब उसने अपना सारा पैसा खर्च किया तब वो सुअरों को खिलाने का काम करता था। एक दिन उसे अकल आई। उसने सोचा, मेरे पिता के नौकरों के पास पेट भरकर खाना है और मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और बोलूंगा, पिताजी, मैंने आपके साथ और परमेश्वर के साथ पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहने के लायक नहीं हूँ। कृपया मुझे आपके सेवकों की तरह बनाओ। तब वह खड़ा हुआ और अपने पिता के पास गया। जब वह दूर था तब उसके पिता ने उसे देखा और उसकी हालत देखकर वे दुखी थे। वे उसके पुत्र के पास दौड़े और उन्होंने उसे गले लगाया। उसने वो सारी बातें अपने पिता से की। पिताजी, मैंने आपके साथ और परमेश्वर के साथ पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहने के लायक नहीं हूँ। तब उसके पिता ने उसके नौकरों से कहा, जल्दी सबसे अच्छे कपड़े लाओ और उसे पहनाओ, उसकी उंगली पर अंगूठी डालो और उसे चप्पल पहनाओ। आज हम भोजन करेंगे और जश्न मनाएंगे। मेरे इस पुत्र के लिए जो गुम हो गया था अब वो मिल गया है। हम सब इस पुत्र की तरह है, हमने पाप किया है और हमने परमेश्वर को छोड़ा है, पर उस पुत्र की तरह हम परमेश्वर परम पिता के पास आ सकते हैं। हमें हमारे पाप धोने चाहिए और हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। वो हमें उसके पुत्र की तरह चाहते हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं ही रास्ता हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमपिता के पास नहीं आता। क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपको परमेश्वर के पास ले जाए? हम परमेश्वर के पास सिर्फ यीशु से जा सकते हैं। परमेश्वर के पास जाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि आपने परमेश्वर से पाप किया है। आपको मानना पड़ेगा कि यीशु ने आपकी सजा ली और परमेश्वर से क्षमा मांगो। आपको यीशु में विश्वास रखना होगा ताकि वो आपको वापस ला सके और परमेश्वर की तरह रहने सिखाए। मानना पड़ेगा कि यीशु आपका मालिक है। बाइबल कहती है, परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं और उसे यह कह सकते हैं, परमेश्वर, मुझे पता है कि आप मुझे प्यार करते हो, मैंने आपसे पाप किया है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं यीशु में विश्वास रखता हूँ और मैं मानता हूँ कि उसने मेरे लिए अपनी बलि चढ़ाई। परमेश्वर, कृपया मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि यीशु खुशी से मेरा मालिक है और इस समय से। शुक्रिया, आपने मुझे नया और अनंत जीवन और अपना पुत्र माना। क्यों ना आप उसे अभी बुलाते हैं? अगर आप सच में यीशु को बुलाते हैं तो आप आज से उसके पुत्र हमेशा के लिए बन गए। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग जाने कि आप उसके पुत्र हैं। परमेश्वर का मकसद है कि आप उसके पास आए और आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी परमेश्वर के पास लाएं। ऐसा कौन है जिसे ये कहानी सुननी चाहिए?